5 दिन बाद सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। सब लोग एक साथ हॉल में बैठे थे। जानवी और माही दोनों किचन में थीं और आपस में कुछ बातें कर रही थीं। जानवी ने गैस पर चढ़े उबलते दूध में कॉफ़ी पाउडर डालते हुए कहा, क्यों ना हम दोनों शॉपिंग पर चलें, बहुत दिनों से मैं तुम्हारे साथ कहीं बाहर नहीं गई हूँ। ये सुनकर माही का चेहरा खिल उठा। उसने भी जल्दी से कहा, हाँ यार, हम कितने दिनों से एक साथ बाहर घूमने नहीं गए। मुझे तो पहले वाले दिन याद आ गए जब हम एक साथ कैंटीन जाते थे, कितना मज़ा आता था। जानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे भी आज अमर और दीक्षांत दोनों घर पर ही हैं, तो हम शॉपिंग करने जा सकते हैं। वो दोनों खुश होते हुए कॉफ़ी लेकर बाहर आईं। बाहर सब आपस में हंसते मुस्कुराते हुए बात कर रहे थे, सिवाय समर्थ के, क्योंकि वो अभी भी इतनी सारी अपनों की भीड़ में खुद को अकेला महसूस कर रहा था। जानवी ने सबको कॉफ़ी दी और फिर अमर के बगल में जाकर बैठ गई। उसने धीरे से अमर से कहा, अमर, मुझे आज शॉपिंग पर जाना था। अमर ने भी ठीक उसी की तरह फुसफुसाते हुए कहा, आज मुझे समर्थ के चेकअप के लिए जाना है जान, तुम एक काम करना, तुम और माही दीक्षांत के साथ चली जाना। जानवी ने कॉफ़ी का घूंट भरते हुए कहा, आपको तो हमेशा ही कुछ ना कुछ काम होता है, वैसे समर्थ कब तक ठीक हो जाएंगे? इतना बोलते हुए जानवी ने समर्थ के चेहरे को देखा। समर्थ की नज़र एक बार भी उठकर किसी और को नहीं देख रही थी, वो बस फर्श को घूर रहा था। अमर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वैसे कुछ नहीं हुआ है, बस तुम्हारी बहन को भूल नहीं पा रहा है, इसलिए हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। क्या पता कोई सुंदर सी डॉक्टर या नर्स ही पसंद आ जाए इसे। ये सुनकर जानवी को हंसी आ गई। रजत ने उन दोनों की इन खुसर फुसर से इरिटेट होते हुए कहा, एक काम करो, तुम मियाँ बीवी अपने कमरे में चले जाओ, यहाँ सब लोग बैठे हैं, सबको आपस में बातें करनी है, पर तुम दोनों की खुसर फुसर ही बंद नहीं हो रही है। ऐसी कौन सी प्राइवेट बात है जो तुम इतने धीरे धीरे बोल रहे हो? कल्याण सिंह ने रजत को फटकारते हुए कहा, नालायक, वो उनकी पर्सनल बात है, तुझे क्यों बताएंगे? इतना बोलकर उन्होंने खुश होते हुए जानवी और अमर को देखकर कहा, जल्दी जल्दी अपनी बातों की खिचड़ी पकाओ, मैं तो चाहता हूँ तुम दोनों बाकी दुनिया को भूल ही जाओ, बस अपने में ही लगे रहो और फिर जल्दी से मुझे परदादा बना दो। जानवी जहाँ खुश हो रही थी ये सोचकर कि कल्याण सिंह जी उसकी साइड ले रहे थे, उनकी आगे की बात सुनकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने रोनी सूरत बनाकर अमर की तरफ देखा और उसका ये चेहरा देखकर अमर जोरों से हंस पड़ा। उसने हंसते हुए कहा, कल्याण सिंह जी, आपने तो अपनी बहू के अरमानों पर पानी फेर दिया। कल्याण सिंह ने जल्दी से अपनी गलती रियलाइज करते हुए अपना गला सही करते हुए कहा, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है कि मैं सिर्फ परदादा बनना चाहता हूँ, वो तो बस मेरा एक सपना है, बाकी मैं तो अपनी बेटी से भी बहुत प्यार करता हूँ, तो कैसे अपने बेटे को उसे परेशान करने दे सकता हूँ, मैं बस इसीलिए तुम्हारी साइड ले रहा था, तुम कहो तो एक दो थप्पड़ लगा दूँ मैं इसको, फिर इसे अकल आएगी। रजत ने आँखें बड़ी करते हुए कहा, पोता बहू के आते ही अपने सगे बेटे पर हाथ उठाएंगे आप, मुझे नहीं पता था आप इतनी जल्दी बदल जाएंगे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर बाकी सब हंसने लगे थे। इस बार तो समर्थ के चेहरे पर भी छोटी सी स्माइल आई थी, जिसे देखकर अमर और जानवी दोनों ने एक साथ सुकून की सांस ली। थोड़ी देर बाद अमर समर्थ को लेकर अस्पताल के लिए निकल गया था, तो वहीं दीक्षांत भी जानवी और माही के साथ शॉपिंग मॉल के लिए निकल गया। वहीं रावत मेंशन से कुछ दूरी पर खड़े एक आदमी ने अपने ब्लूटूथ को कनेक्ट करते हुए सामने वाले से कहा, सर, अभी अभी अमर रावत की गाड़ी और दीक्षांत की गाड़ी एक साथ रावत मेंशन से बाहर गई है। उधर से संयम सिंघानिया की गहरी आवाज़ आई, अमर रावत की पत्नी कौन सी गाड़ी में है, उसकी वजह से मैं बहुत जिल्लत झेली है, उसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। संयम के बॉडीगार्ड ने जल्दी से कहा, वो दीक्षांत के साथ है और उसके साथ दीक्षांत की सेक्रेटरी भी। संयम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, तुम उन दोनों का पीछा करो और मुझे अपडेट देना, मैं फुल प्रूफ प्लान तुम्हें सेंड करूंगा, जैसे ही मौका मिले जानवी को उठा लेना। उस बॉडीगार्ड ने थोड़ा डरते हुए कहा, दीक्षांत के पीछे एक और गाड़ी गई है जिसमें उनके बॉडीगार्ड्स हैं, मुझे नहीं लगता उन सबके होते हुए जानवी को उठा पाना आसान रहेगा। संयम ने गुस्से में जबरे भीजते हुए कहा, चाहे ये आसान हो या मुश्किल, तुम्हें करना ही होगा, मैं कुछ और आदमी भेजता हूँ। इतना बोलकर संयम ने कॉल कट कर दिया। करीब आधे घंटे बाद दीक्षांत की गाड़ी एक बड़े से शॉपिंग मॉल के सामने जाकर रुकी। माही और जानवी खुश होते हुए अंदर आईं, पर अचानक ही उन दोनों का मुँह एक साथ बिगड़ गया जब उन दोनों ने अपने आसपास बॉडीगार्ड की लंबी लाइन देखी। जानवी ने जल्दी से दीक्षांत की तरफ देखते हुए कहा, दीक्षांत, आप है ना हमारे साथ, इन बॉडीगार्ड की क्या जरूरत थी, इस वीआईपी ट्रीटमेंट की हम दोनों को आदत नहीं है, बहुत अजीब महसूस होता है, तभी तो मैं इतने दिन शॉपिंग पर नहीं आ रही थी, मुझे लगा आप बॉडीगार्ड तभी भेजते हो जब आप दोनों में से कोई हमारे पास नहीं होता है। दीक्षांत ने जानवी को आंखें दिखाते हुए कहा, भाभी जान, मुझे इस बात पर कोई बहस नहीं करनी है, इनमें दो फीमेल बॉडीगार्ड भी हैं जो आप दोनों के साथ चेंजिंग रूम तक भी जाएंगी, हमें अभी तक जसवंत और संयम के एड्रेस नहीं मिले हैं और जब तक हम उन दोनों को नहीं पकड़ लेंगे आप दोनों को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं,
और आप बेफिक्र रहिए, ये बॉडीगार्ड आपकी शॉपिंग में कोई दखलंदाजी नहीं दे रहे हैं। जानवी और माही दोनों ने अफसोस से एक दूसरे की तरफ देखा और फिर शॉपिंग मॉल के अंदर आ गईं। उन दोनों के अंदर आते ही दीक्षांत भी वहां लगे वेटिंग एरिया के सोफे पर बैठ गया और अपना फोन निकालकर अमर को अपने शॉपिंग मॉल पहुंचने का मैसेज कर दिया। इसके तुरंत बाद ही अमर का कॉल आया। दीक्षांत ने कॉल उठाते हुए एक लंबी सांस छोड़कर कहा, क्या हाल है उस महान इंसान का, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? अमर जो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में चक्कर लगा रहा था, उसने धीरे से कहा, कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनको तो लगता है समर्थ को साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, पर मुझे पता है वो इतना भी पागल नहीं हुआ है कि हम उसे साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाएं। पर एक बात क्लियर हो चुकी है, वो उस लड़की को भूल नहीं पाएगा और उसे सबसे ज्यादा बुरा यही लग रहा है कि वो लड़की अभी भी जेल में है। कुछ पल दोनों तरफ खामोशी बिखरी रही, फिर दीक्षांत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर उसके जेल से छूट जाने पर समर्थ को थोड़ी राहत मिलती है तो हमें ये जरूर करना चाहिए। अमर ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं भी बस यही सोच रहा था, चलो मैं मिस्टर मल्होत्रा को कॉल करके बोल देता हूँ कि वो अब त्रिशा की बेल करवा सकते हैं। अमर ने उसके तुरंत बाद ही पहले पुलिस स्टेशन में कॉल लगाया कि त्रिशा की बेल को मंजूरी दे दी जाए और उसके बाद महेश को, ताकि वो त्रिशा को जेल से रिहा करवा के घर ले आए। वहीं जानवी और माही ने बहुत सारी ड्रेस एक साथ सेलेक्ट कर ली थी, जिसके बाद जानवी ने चेंजिंग रूम की तरफ जाते हुए कहा, ठीक है, मैं पहले सारी ट्राई करके देखती हूँ, इनमें से हम 5 सेलेक्ट करेंगे। ये सुनकर माही ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, अमीर पति से शादी क्या हुई, तुम बहुत ज्यादा बिगड़ दें, तुम्हें पता भी है ये सारी ड्रेस कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव है। जानवी ने बत्ती सी चमकाते हुए कहा, अगर कोई इंसान मुझ पर खर्च करना चाहता है तो मैं क्यों पीछे हटूं, और मैं तो कहती हूँ तुम्हें भी ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए, आज तो दीक्षांत का बैंक बैलेंस पूरा उड़ा डालो। इतना बोलकर जानवी मुस्कुराते हुए चेंजिंग रूम में गई और उसके तुरंत बाद ही एक बॉडीगार्ड उस रूम के दरवाजे के सामने जाकर खड़ी हो गई।
वहीं अंदर जाते ही जैसे ही जानवी ने अपना दुपट्टा उतारना चाहा, सामने किसी इंसान को देखकर उसकी आंखें फैल गईं। वो चिल्ला पाती उससे पहले उसके मुंह पर किसी ने रुमाल रखा और अगले ही पल जानवी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बाहर खड़ी बॉडीगार्ड जो चौकन्ना होकर इधर उधर अपनी नजरें दौड़ा रही थी कि अचानक उसे महसूस हुआ कि चेंजिंग रूम का दरवाजा नॉक हो रहा है। ये देखकर उस बॉडीगार्ड ने धीरे से कहा, क्या हुआ मैडम, आपको हेल्प की जरूरत है क्या? पर सामने से कोई जवाब नहीं आया, बस चेंजिंग रूम का दरवाजा हल्का सा खुल गया। ये देखकर वो बॉडीगार्ड जल्दी से रूम के अंदर आ गई ताकि वो जानवी की जल्द से जल्द मदद कर पाए। उसके अंदर आते ही दरवाजा एक बार फिर बंद हो चुका था, तो बॉडीगार्ड मुड़कर कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसके चेहरे पर भी एक रुमाल आया और वो भी अगले ही पल बेहोश हो गई। वहीं वो और कोई नहीं बल्कि जसवंत की ही कोई फीमेल बॉडीगार्ड थी। उस लड़की ने जल्दी से एक बुर्का निकालकर जानवी को पहनाया और वो ऑलरेडी बुरखे में थी। उसने जानवी को संभालते हुए खड़ा किया और फिर उसका चेहरा पूरी तरीके से कवर करते हुए चेंजिंग रूम से धीरे से बाहर निकली। उसने देखा कि वो दूसरी बॉडीगार्ड माही के पीछे पीछे घूम रही थी। वहीं जो भी मेल बॉडीगार्ड थे वो शॉपिंग मॉल के बाहर दरवाजे पर पहरेदारी कर रहे थे और दो दीक्षांत के इर्द गिर्द खड़े थे। वो लड़की संभालते हुए जानवी को वहां से ले जाने लगी। उसे देखकर एक सेल्स गर्ल ने जल्दी से कहा, क्या हुआ मैडम? ये देखकर उसे लड़की ने हड़बड़ाते हुए कहा, ये ना मेरी बहन है, इसको अचानक ही चक्कर आ गए तो मैं इसे बाहर लेकर जा रही हूँ। ये सुनकर उसे सेल्स गर्ल ने कहा, हमारे यहाँ भी इमरजेंसी मेडिकल रूम है, आप चाहो तो वहाँ हम डॉक्टर बुला सकते हैं। ये सुनकर उस बॉडीगार्ड ने जल्दी से कहा, थैंक यू सो मच मैडम हमसे पूछने के लिए, पर इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगी। इतना बोलकर वो नज़रें झुकाते हुए जल्दी जल्दी जानवी को लगभग घसीटते हुए वहाँ से ले जाने लगी। 15 मिनट बीत गए और जब माही को लगा जानवी को कुछ ज्यादा ही देर लग रही है तो वो वापस वहीं आ गई जहां वो चेंजिंग रूम था, पर सामने बॉडीगार्ड को ना देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसने जल्दी से अपने पास खड़ी बॉडीगार्ड की तरफ देखकर कहा, वो जो तुम्हारे साथ आई थी वो कहाँ चली गई जो जानवी को प्रोटेक्ट कर रही थी? ये देखकर वो बॉडीगार्ड भी जल्दी से उस चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ते हुए बोली, पता नहीं मैडम, यहीं तो खड़ा करके गई थी मैं उसे। उसने आगे बढ़ते हुए जल्दी से चेंजिंग रूम का दरवाजा खटखटाया तो वो दरवाजा अपने आप ही खुल गया। ये देखकर माही और भी ज्यादा घबरा गई। उस बॉडीगार्ड ने अंदर जाकर देखा और फिर घबराते हुए बोली, यहाँ जानवी मैडम नहीं है और ये मीरा भी बेहोश हो चुकी है। ये सुनकर माही जल्दी से दौड़ते हुए दीक्षांत के पास गई और घबराते हुए बोली, दीक्षांत, जानवी नहीं मिल रही है।